आरव ने आयु को अपने पास लाने का रास्ता निकाल लिया था और साथ ही वो उसको अपने पास रोकने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी कर रहा था। इस बीच उसने माहिरा को भी खुद की मदद करने के लिए मना लिया था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन माहिरा ने उसे याद दिलाया कि सिर्फ वही आयु के आने का इंतजार नहीं कर रहा है, मंथन भी आयु के आने का इंतजार उतनी ही बेसब्री से कर रहा है। आरव ने माहिरा के सामने तो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसे मंथन के मामले में कोई ना कोई हल निकालना जरूरी था। जैसे ही माहिरा वहां से गई, आरव ने अपना मोबाइल उठाया और सीधे किसी को कॉल घुमा दिया। सामने से एक औरत की रूखी सी आवाज आई, हेलो जी, कौन बोल रहा है? वो मंथन की माँ कविता थी। नमस्ते आंटी जी, मैं मंथन का दोस्त बोल रहा हूँ, आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। मंथन के दोस्त हो तो उसे कॉल करो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कविता ने मुंह बनाकर कहा। वो कॉल कट करने वाली थी कि तभी आरव जल्दी से बोला, अरे नहीं आंटी जी, मुझे आपसे ही काम था। मंथन तो पागलपन पर उतर आया है, सोचा आप उसके घर वाले हैं तो उसे समझाएंगे, वो ये ठीक नहीं कर रहा है। आरव की आवाज़ काफ़ी गंभीर थी और कविता तुरंत सतर्क हो गई थी। वो जल्दी से बोली, अब क्या किया उसने? आपको उस लड़की के बारे में पता होगा ना, जिससे शादी करने की वो पागलों की तरह जिद कर रहा है? मैं आयु की बात कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि वो लड़की वापस आ रही है और मंथन ने मुझे ये कहा कि इस बार वो उससे शादी करके ही दम लेगा, आरव ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। ये सब सुनकर कविता को एक झटका सा लगा। वो जल्दी से खड़ी हो गई थी और गुस्से में खौलते हुए बोली, ऐसे कैसे हमारी मर्जी के बिना वो शादी करेगा? पता नहीं उस लड़की ने भी उस पर क्या जादू कर दिया है जो उसकी शादी होने के बावजूद भी उसके पीछे पड़ा है। और उसका पति कहाँ मर गया? उन दोनों का तलाक नहीं हुआ है? उस आदमी से अपनी पत्नी तक नहीं संभाली जाती है? पता नहीं बिजनेस कैसे देख रहा है? कविता पहले आयु को तो फिर आरव को भला बुरा कहने लगी थी, जिसे सुनकर आरव खांसने लगा था। आंटी, वो लड़की एक दो दिन में ही वापस आ रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? ऐसे में वो उससे दूर भी रहेगा और वक्त रहते वो उसे भूल ही जाएगा, आरव ने उसे सुझाव देते हुए कहा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो जानता था कि उसने बिल्कुल सही जगह कॉल किया है। मंथन की माँ कविता कभी नहीं चाहती थी कि मंथन और आयु साथ में आए। आरव को बस उनके जवाब का इंतजार था, जिसे लेकर वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उस लड़की के चक्कर में उसने हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। पागल हो गया है और कहता है कि तभी हमसे बात करेगा जब हम उन दोनों की शादी में आकर उन्हें आशीर्वाद देंगे, कविता ने मायूसी से जवाब दिया, जिसे सुनकर आरव का भी मुंह बन गया था। ठीक है, देख लीजिएगा, मुझे लगा आपको खबर होनी चाहिए। ज्यादा कुछ ना सही, चंडीगढ़ आ जाइए और गलती से भी वो दोनों मिलें तो बता दीजिए उन्हें कि आप कौन हैं, आरव बोला। उसने कविता को अच्छा खासा भड़का दिया था। आरव को लगा था कि कविता जी उसकी मुश्किल को आसान कर देंगी, लेकिन उनकी तरफ से भी उसे मायूसी ही हाथ लगी थी। अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि मंथन की मॉम यहाँ पहुँच जाए और उस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। माहिरा से हेल्प मांग तो ली है, लेकिन मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ओबरॉय फैमिली के सामने अगर मैं माहिरा के साथ दिखा तो वो आयु को भड़काने की कोशिश करेंगे। ओ गॉड, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आरव ने चिढ़ते हुए कहा। जहाँ एक तरफ आरव आयु के आने को लेकर इतनी तैयारी कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस्टी को आरव का मेल मिला तो उसने तुरंत उसे आयु को फॉरवर्ड कर दिया था। ये पहले ही तय हो गया था कि डिजायर्स में मीटिंग अटेंड करने के लिए आयु जाने वाली है। उसके साथ अयान भी जा रहा था। आयु के लिए अयान ने ऑफिशियली सेलिब्रेशंस को ज्वाइन कर लिया था। वो आयु के असिस्टेंट की पोजिशन पर था। आरव इस बात से पूरी तरह अनजान था कि आयु अयान के साथ एक दिन पहले ही चंडीगढ़ पहुँच चुकी है। अयान ही ऐसा चाहता था। वो आयु को आरव के सामने ले जाने से पहले किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो दोनों चंडीगढ़ में साथ में शॉपिंग कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके लिए इतनी तैयारी करूंगी। मेरा बस चले तो मिलते ही सबसे पहला काम मैं उसका गला दबाने का करूंगी, आयु ने चिढ़ते हुए कहा, जो अभी अभी अयान के साथ स्पा से निकली थी। उन्होंने स्पा में एक अच्छा खासा रिफ्रेशिंग टाइम बिताया था। अयान ने उसके बाजू को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाओ, ज्यादा गुस्सा करोगे तो रिंकल्स पड़ने लगेंगे, हमें ये नहीं करना है। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझा दिया कि तुम्हें उसके सामने ऐसे जाहिर करना है जैसे तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बिल्कुल प्रोफेशनल बिहेव करोगी, मीटिंग के अलावा बिल्कुल भी इधर उधर की बातें करने का मौका नहीं दोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि वो बाज आएगा? वो पक्का कोशिश करेगा कि मीटिंग के अलावा सारी बातें इधर उधर की ही करे, आयु ने गहरी सांस लेकर कहा। वो दोनों इस वक्त मॉल की तरफ बढ़ रहे थे। कमॉन यार, मैं तुम्हें इतने टाइम से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ तो उसका इस्तेमाल करना। और तुम आरव को मुझसे बेहतर जानती हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह की सिचुएशन तुम दोनों के बीच में पहले भी आई होगी, जहाँ तुम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते होंगे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें साथ में काम करना पड़ा होगा। सोचो, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब भी उसके बाद तुम दोनों ने एक दूसरे को फेस किया था, तब क्या तुम्हें किसी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी थी? या तब भी तुम्हें इस बात का डर लगता था कि आरव प्रोफेशनल बिहेव नहीं करेगा? अयान ने आंखें घुमाकर कहा। मैं भला किसी से ट्रेनिंग क्यों लूंगी, मैं खुद ही काफी हूँ उससे निपटने के लिए, आयु ने सिर हिलाकर कहा। अयान की बात का उसने अच्छा खासा जवाब तो दे दिया था, लेकिन साथ ही वो अगले ही पल चुप हो गई थी। उसकी बातों से वो एक बार फिर अतीत में चली गई थी। आयु को वो दिन याद आ गया था जब शादी करने के बाद आरव ने उसे रोड पर धक्का देकर अकेले छोड़ दिया था। एक वक्त ऐसा था कि वो कभी ये शादी नहीं निभाना चाहता था, और आज वही आरव आयु को अपने करीब लाने के लिए न जाने क्या कुछ नहीं कर रहा था। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? अयान ने उसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा। वो खोई हुई लग रही थी। कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी उसकी ये जिद कुछ ही दिनों की है, वो शादी वगैरह में यकीन नहीं करता है, आयु ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। पहले जहां आयु मायूस होकर शांत हो गई थी, तो वहीं अब कुछ वैसा ही हाल अयान का था। आरव शादी पर यकीन क्यों नहीं करता था, या अयान से बेहतर कौन जानता था। अयान को खामोश देख आयु को लगा कि वो उसकी वजह से परेशान है। उसने हंसते हुए कहा, चलो ये सब छोड़ो, कल जब हम फ्री हो जाएंगे तब पूरे चंडीगढ़ में घूमने के लिए जाएंगे, ये काफी खूबसूरत शहर है। हाँ, लेकिन पहले हमें मीटिंग की तैयारी करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से तैयार होना और एक बोल्ड सी ड्रेस पहनकर जाना। हम तुम्हारे लिए काफी सारी शॉपिंग करते हैं, और एक काम करना, तुम अपने बालों को कर्ली कर लेना, उस पर तुम हॉट लगती हो, अयान बोला। तुम बिल्कुल साक्षी दीदी की तरह बात कर रहे हो। जब मैं पहली बार डिजायर्स में इंटरव्यू के लिए गई थी, तब उन्होंने मुझे ऐसे ही तैयार करके भेजा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं, आरव खुराना को इम्प्रेस करने के लिए जा रही हूँ, आयु ने हंसकर कहा। हाँ, किसी महान इंसान ने कहा है कि अगर आप अच्छे कपड़े पहन लो तो आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, अयान ने सिर हिलाकर कहा।
डोंट टेल मी, वो महान इंसान कोई और नहीं, तुम हो, आयु से घूरते हुए बोली, जिस पर अयान ने हंसकर हाँ में सिर हिला दिया था। अयान आयु को मॉल के अंदर लेकर गया, जहां उन्होंने काफी सारी शॉपिंग की। शॉपिंग के बाद उन्होंने बाहर खाना खाया और फिर होटल पहुंच गए थे। आयु ने जानबूझकर डिजायर्स के पास ही किसी होटल को बुक करवाया था, ताकि उन्हें मीटिंग में जाने के लिए देर ना हो। सिर्फ आयु ही नहीं, ओबेरॉय फैमिली भी चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डिजायर्स में होने वाली मीटिंग को आयु अटेंड करने के लिए आएगी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका आरव और आयु को इतने वक्त से बेसब्री से इंतजार था। आरव जानबूझकर मीटिंग में माहिरा के साथ पहुंचा था। वो सब लोग मीटिंग रूम में सेलिब्रेशंस के एम्प्लॉय के आने का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग से पहले ब्रीफिंग की जा रही थी। सारा काम पहले ही खत्म हो चुका था। अगर किसी चीज की देरी थी तो वो इस कलेक्शन को लॉन्च करने की थी। चलो, मुझे खुशी है कि ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो रहा है, पर साथ ही बात अभी भी इसी मामले पर अटकी हुई है कि शो स्टॉपर कौन बनने वाला है, रेहान ने आरव की तरफ देखकर कहा। ये हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले इस मीटिंग पर ध्यान देते हैं, आरव ने जवाब दिया। वो जानबूझकर आयु का जिक्र तक नहीं कर रहा था, जबकि आरव के दिमाग में भी यही चल रहा था कि वो आयु को इस इवेंट को अटेंड करने के लिए मना ही लेगा। जय जी ने गहरी सांस ली और घड़ी देखते हुए कहा, हाँ सही कहा, मीटिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन मीटिंग तो तब शुरू होगी ना जब सेलिब्रेशंस की तरफ से मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई आएगा। मीटिंग का टाइम 11 बजे का था और 11 बज चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया है। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्रिस्टी ने अभी उसे ये नहीं बताया था कि मीटिंग अटेंड करने के लिए आयु ही आने वाली है, और जिस तरह से अभी तक कोई नहीं आया था, आरव को दिल ही दिल में डर लग रहा था कि कहीं कोई और मीटिंग अटेंड करने के लिए ना आ जाए। आयु समय की पाबंद थी। आरव ने घड़ी में टाइम देखा और फिर दरवाजे की तरफ बेचैनी से देखने लगा। उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे लगता है जो भी आने वाला है उसे दूसरों के टाइम की कीमत बिल्कुल नहीं है, और मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं हो पाते हैं, जय जी ने भी झुंझलाकर जवाब दिया। जहां एक तरफ वे लोग आयु के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और साथ ही इस बात पर गुस्सा भी हो रहे थे कि मीटिंग अटेंड करने वाला एम्प्लॉई अभी तक पहुंचा नहीं है, वहीं आयु जानबूझकर होटल में बैठकर तैयार होने में टाइम लगा रही थी। अयान कब का उसके कमरे के बाहर खड़ा था, और न जाने उसे कितनी बार टाइम देखने का कह चुका था, लेकिन फिर भी आयु बाहर नहीं निकली थी। लगता है तुम्हारा पूरा मन है अपने मिस्टर खुराना से डांट खाने का, और फिर बोल रही हो कि सब कुछ प्रोफेशनल रखना है, अयान ने बाहर से चिल्लाकर कहा। उसने आयु को टाइम भी याद दिला दिया था। जो मीटिंग 11 बजे होने वाली थी उसके लिए अब 11:30 बज चुके थे, जबकि आयु तैयार होने के बावजूद बाहर आने के बजाय आईने के सामने खड़ी खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। किसी को तड़पाना क्या होता है वो आयु से सीखे। आरव भाई, तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, चलेगी तो तुम्हारी मिसेस खुराना की ही। चलिए पढ़कर समीक्षा करके जाना।